मेरे गुरु ने मिटाया भरम, मेरे गुरु ने मिटाया भरम, कि दिल मेरा नच नच जान्दा, कि दिल आज नच नच जान्दा, कि दिल आज नच नच जान्दा, कि दिल मेरा नच नच जान्दा। मेरे गुरु ने मिटाया भरम, मेरे गुरु ने मिटाया भरम, कि दिल आज नच नच जान्दा, कि दिल आज नच नच जान्दा। अरे जुझ को कोई फिक्र नहीं जब रथ चलाए ओ, जब रथ चलाए ओ, अरे जुझ को कोई फिक्र नहीं जब रथ चलाए ओ, जब रथ चलाए ओ, जब सारथी एक ओंकारा, जब सारथी एक ओंकारा, तो दिल आज नच नच जान्दा, कि दिल आज नच नच जान्दा। चाहे गिर गिर जाऊं रास्ते में, एक हाथ फेरे मेरा, एक हाथ फेरे मेरा, जब गिर गिर जाऊं रास्ते में, एक हाथ फेरे मेरा, एक हाथ फेरे मेरा, हमरा ही जब ओंकार, हमरा ही एक ओंकारा, तो दिल मेरा नच नच जान्दा, कि दिल आज नच नच जान्दा। तूफानों में कोई चिंता नहीं, मेरी नाव चलाए ओ, मेरी नाव चलाए ओ, तूफानों में कोई चिंता नहीं, मेरी नाव चलाए ओ, मेरी नाव चलाए ओ, जब माझी एक ओंकारा, मेरा माझी एक ओंकारा, तो दिल मेरा नच नच जान्दा, के दिल आज नच नच जान्दा। माया जब थकने आए, एक नजर फेरे मेरा ओ, एक नजर फेरे मेरा ओ, माया जब थकने एक नजर फेरे मेरा ओ, एक नजर फेरे मेरा ओ, हुई भस्म है माया जा, हुई भस्म है माया जा, तो दिल मेरा नच नच जान्दा, कि दिल आज नच नच जान्दा, कि दिल आज नच नच जान्दा। हो जितनी अंधेरी रात, एक ज्योत जगाए ओ, एक ज्योत जगाए ओ, हो जितनी अंधेरी रात, एक ज्योत जगाए ओ, एक ज्योत जगाए ओ, सतनाम एक ओंकारा, जप जप एक ओंकारा, तो दिल आज नच नच जान्दा, के दिल आज नच नच कुछ जला। मेरे गुरु ने मिटाया भरम, मेरे गुरु ने मिटाया भरम, तो दिल मेरा नच नच जला, के दिल आज नच नच जला। परम पूज्य स्वामी जी के पावन चरणों में ये भजन समर्पित है।
हमारा सारा जीवन ये खुशहाल कर दिया, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन खुशहाल कर दिया, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने निहाल कर दिया, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया। अंधेरे में थे हम, दिया प्रकाश आपने, अंधेरे में थे हम, दिया प्रकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ शिक्षा ने बेमिसाल कर दिया, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया। प्रणाम करते हाथ जोड़ के कर लेना स्वीकार, प्रणाम करते हाथ जोड़ के कर लेना स्वीकार, अपने गुरु के नतमस्तक हैं लाख लाख बार, अपने गुरु के नतमस्तक हैं लाख लाख बार। आपके शुभ आशीष ने मालामाल कर दिया, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन ये खुशहाल कर दिया, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, आपने कमाल कर दिया। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। निशदिन तेरा ध्यान धरे हम, सुमिरे मन मंत्र तिहारा, हे शिव शंकर मन मंत्र जगा दो, होवे घट उजियारा, नमामि शंकर भवानी शंकर, नमामि शंकर भवानी शंकर, कृपा करो त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। शंखनाद से शब्द जगा कर स्वर संगीत बहाया, युग युग से ये सृष्टि नाचे ऐसा डमरु बजाया, तेरी याद भुला के जग में, तेरी याद भुला के जग में, दुख पावे संसारी, जय भोला जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, तीनों ताप हरण कर लेता, तीनों ताप हरण कर लेता, ये त्रिशूल निहारा, तेरा नाम जपे से जग में, तेरा नाम जपे से जग में, पावे मुक्ति द्वारा, महादेव पर ब्रह्म विधा, महादेव पर ब्रह्म विधाता, आए शरण तिहारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी।
परम पूज्य परमादरणीय निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के अति पावन चरणारविंद में प्रणाम। परम पूज्य परमादरणीय मंचस्थ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री स्वामी जी के पावन जुगल चरणारविंद में प्रणाम।
ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभम् चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गम् परशुमृगवरा वीतिहस्तम् प्रसन्नम् पद्मासीनम् समन्तात् स्तुतममरगणिर्व्याघ्रकृत्युम् वसानम् विश्वाद्यम् विश्ववन्द्यम् निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रम् त्रिनेत्रम् नारायणम् पद्मभवम् वसिष्ठम् शक्तिम् च तत्पुत्रपराशरम् च व्यासम् सुकम् गौडपदम् महन्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमताश्च शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमताश्च पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। शिवाय। शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। हराय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ नमो हराय। हराय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ नमो हराय। हराय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ नमो हराय। हराय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ नमो हराय। भवाय नमः। ॐ भवाय नमः। ॐ भवाय नमः। ॐ नमो भवाय। भवाय नमः। ॐ भवाय नमः। ॐ नमो भवाय। भवाय नमः। ॐ भवाय नमः। ॐ भवाय नमः। ॐ नमो भवाय। भावाय नमः ओम ओम नमो भावाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय 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 नमः ओम नमो मृडाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरंतरम जप मन शिव शिव निरंतरम भज मन शिव शिव जप मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव निरंतरम स्मर मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव स्मर मन शिव शिव निरंतरम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम 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 आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिव भक्ति से ओतप्रोत स्तोत्र शिवानंद लहरी के आधार पर शिव भक्ति के भाव पर विचार कर रहे हैं। अभ्यास के लिए श्लोक है 46वां। आकिरणे नकराचि कांति विभवई रुद्यत सुधा वैभवेर राधौते पिच पद्मराग ललिते हंस ब्रजैराश्रिते नित्यं भक्ति बधु गणेश्च रहसि स्वेच्छा विहारं कुरु स्थित्वा मानस राजहंस गिरिजा नाथांग्रि सौदांतरे संबोध्यान वसंत संगिनी रिदा रामे अघ जीर्ण छदा स्रस्ता भक्तिलता छटा बिलसिता पुण्य प्रवाल श्रिता दीप्यन्ते गुणकोरका जपवच पुष्पाणि सद्वासना ज्ञानानंद सुधा मरंदलहरी संबित फलाभ्युन्नति नित्यानंद रसालयम् सुरमुनि స్వాంతాంబుజాశ్చాశ్రయం స్వచ్ఛం సద్విజసేవితం కలు సరిత్ సద్వాసనా విస్కృతం సంబోధ్యాన సరోరహం బ్రజమనో హంసావతంస స్థితం కిం క్షుద్రాశ్రయ పల్లవ భ్రమణ సన్ జాతశ్రమం ప్రాప్స్యతి ఆనందామృత పూరిత హరపదాం భోజాలవాలోద్యత స్థైర్యోపగ్నముపేత్య భక్తిలతికా సాకోపశాఖాన్విత ఉచ్చైర్మానసకాయమాన పటలీ మాక్రమ్య నిష్కల్మషా నిత్యాభీష్టఫలప్రదా భవతు మే సత్కర్మ సంవర్ధిత సంధ్యారంభ విజృంభితం శ్రుతిశిరస్ తానాంతరాధిష్ఠితం సప్రేమ భ్రమరా విరామ మన మసకృత్ సద్వాసనా శోభితం భోగీంద్రావరణం సమస్త సుమన పూజ్యం గుణావిష్కృతం సేవే శ్రీ గిరిమల్లికార్జున లింగం శివాలింగితం ఆకీర్ణే నఖరాజికాంతి విభవేర్ ఉద్యత్సుదా వైభవేర్ ఆద్భౌతేపి చ పద్మరాగ లలితే హంసబ్రజైరాశ్రితే నిత్యం భక్తి బదు గణేశ రహసి స్వేచ్ఛావిహారం కురు స్థిత్వా మానసరాజహంస గిరిజా నాథాంగ్రి సౌధంతరే. సాధారణ మనుష్య కమ్మన్ జీవన్ మే రహనే కే లియే ఏక్ అచ్చే ఘర్ కీ కల్పనా కర్తా హై. ये बात अलग है कि उसके प्रारब्ध में न हो और झोपड़ियों से गुजारा करना पड़े, लेकिन झोपड़ी में गुजारा करता हुआ भी व्यक्ति अच्छे घर की कामना करता है, कल्पना करता है और ये सोचता है कि मेरे पूर्व जन्म का कोई शुभकर्म फल देने के लिए आवे और मुझे अच्छा घर बसने रहने के लिए मिल जाए या फिर साक्षात भगवान प्रसन्न हो जाए और रहने के लिए मुझे बढ़िया घर मिल जाए. अच्छे घर की कामना करता है और वो घर उसे प्राप्त भी निश्चित रूप में ये दो ही माध्यम से होगा, तीसरा माध्यम नहीं है. क्योंकि आज के जमाने में आप लोग अन्यथा नहीं लेना, ईमानदारी के कमाई से अच्छा घर में रहना संभव नहीं है. संभव ही नहीं, अच्छा घर कहां से मिलेगा भाई? बजट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अच्छे घर के लिए ईमानदारी के कमाई से. तो उस अवस्था में बेईमानी करना नहीं चाहता है. बात समझ रहे आप? बेईमानी करना नहीं चाहता है, ईमानदारी के कमाई से अच्छा घर उपलब्ध नहीं होगा. तो उस अवस्था में वह दो ही विकल्प उसके सामने रहता है. कौन कौन से? या तो पूर्व जन्म का कोई नसीब प्रारब्ध अच्छे पुण्य फल प्रारब्ध बनकर सामने आवे और वो फल देने के लिए तत्पर हो जाए तो अच्छा घर मिल भी सकता है, असंभव नहीं है. और या फिर साक्षात भगवान प्रसन्न हो जाए तो अच्छा घर मिल सकता है. उसके सामने ये दो ही विकल्प हैं. शंकराचार्य जी कहते हैं यहां, हे मानसराज हंसा, मन का राजा, मानस राजा, मन में ही राजा बनकर रहने वाला मानस राजा, राजहंस, तुम्हारे लिए एक बढ़िया घर है, मैं बता देता हूं। उसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है बेटा। तुमको रहना हो तो वहां जाकर रहो। कहां महाराज? गिरिजांग्री, गिरिजा नाथांग्री सौधांतरे, भगवान शिव के चरण रूपी घर, गिरिजा नाथ अंग्री, गिरिजा के जो नाथ हैं स्वामी भगवान शिव, उनके अंग्री माने चरण, वो तुम्हारे लिए, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही वो घर है। सौधांतरे घर का नाम है, राजमहल का नाम है सौधांतर, सौधा, और उसके अंदर जाके तुम रहो। तो यदि तुम वहां रहने लग गए तो तुम जैसा चाहते वैसा ही है वो घर। समग्र प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक छटा से भरा हुआ है, वहां किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज वहां विद्यमान है। बोले बत्ती है कि नहीं है? वहां सबसे पहले बत्ती है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? हम बहुत पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा में गए थे, हमारे साथ उमा भी थी, गए थे यात्रा में। वह तिब्बत में गए, एक शहर में जाकर बैठे तो वह बत्ती ही नहीं था। अब ट्रैवल एजेंट ले गया था, उसको कहा कि भाई बत्ती तो है ही नहीं। बोले महाराज यहां तो बत्ती है ही नहीं, कैलाश में क्या बत्ती है। ले जी, दूसरी जगह गए तो टॉयलेट ही नहीं था, सब खुले में लोटा लेकर जाओ। अब बंबई वासी खुले में लोटा लेकर क्या जाया जाएगा उनसे? सब लोग मुझे आकर कहने लगे सुबह सुबह, महाराज टॉयलेट क्या छे, कहां है टॉयलेट? हमने कहा अब कहां बताएं भाई, खुला मैदान है जहां भी घर। बोले महाराज वो हमसे नहीं होगा, अब क्या करें। फिर जिस ट्रैवल एजेंट ने हमको ले गया था उसको कहा, अरे बना दो कुछ, तो उसने बनाया, नहीं बनाया भगवान जाने भाई, खुले मैदान में जाओ। तो कई बार कहीं जाते हैं तो कहीं कोई सुविधा विद्यमान है तो कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होता, कुछ उपलब्ध होता है तो कुछ और उपलब्ध नहीं होता। एक जगह गए, सब सुविधा तो थी लेकिन वहां खाने के लिए कुछ नहीं मिला। बेचारा वो ऐसा था कि भोजन बढ़िया नहीं दिया, सब यात्री हल्ला करने लग गए, ये तो भोजन ठीक नहीं बना भाई, सुबह का बासी गरम करके खाने दिया। थका हुआ दिन भर के यात्री, वो चाहते थे कि शाम को गरम गरम कुछ खाएं पिएं, तो अब वो सूप वगैरह कुछ देता। तो ये सारी चीज है जीवन में अनुभव के हैं, ये भी एक अनुभव है। कहते हैं कि वहां बत्ती है कि नहीं उस राजमहल में? बोले उस राजमहल में बत्ती की बात करते हो? दुनिया में जितने बत्ती पावर हाउस हैं वही तो चला रहा है, वहीं से तो सब प्रकाश निकलता है, वो तो वहां बत्ती ना हो। हाँ, यदादित्यगतम तेजो जगत भाषयते अखिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्यमानमकम्। उसी से सारी बत्ती, सारा प्रकाश तो उसी से जा रहा है भाई। वाणी में जो वाक् ज्योति है, कान में जो श्रवण शक्ति ज्योति है, नेत्र में जो रूप प्रकाशित करने की ज्योति है, रोशनी है, ये सारे नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रवाभास्वरम है। एक ऐसा घड़ा है जिसके अंदर एक महादीप जल रहा है और उस महादीप की रोशनी अनेक छिद्रों से बहिर्गच्छति, बाहर सब रोशनी, अंदर तो जल रही है जल रही है, छिद्रों के माध्यम से वही रोशनी बाहर भी इदम पुष्पमालाम प्रकाशित कौन कर रहा है, वही रोशनी अंदर की रोशनी। जानाम्यति, मैं जानता हूं, ये उसी की तो रोशनी है। तो तुम फिर वहां बत्ती है कि नहीं की बात करते हो या? हाँ तो है तो खैर कैसी बत्ती है, कौन सी है? आकिरणे नकराजी कांति विभवई, भगवान शिव के जो चरण हैं, चरण में जो अंगुलियां हैं, और भगवान शिव के चरण की जो अंगुलियां हैं उनमें जो उभरे हुए नख हैं, उसकी रोशनी इतनी सुंदर है, है? दस दस बल्ब जले हैं, कितना दस उंगुलियां है ना, नख कांति। देखो साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं शंकराचार्य जी। आकीर्णे माने उभरे हुए, उठे हुए। तो कभी कभी किसी किसी के पांव की बनावट ऐसी होती है कि वो नख भी गड्ढे पड़ जाते हैं, उठते नहीं है। और अच्छे नख तो वे है उंगलियां जिसमें नख उठे हुए, उभरे हुए, वो लंबे नहीं है, वो तो सूर्पणखा हो गई, लंबे की बात नहीं कह रहे हैं, बीच में उठना चाहिए, वो अच्छे स्वस्थता का प्रतीक है, अच्छे शरीर का प्रतीक है वो। और शरीर में जब विकार होता है तो वो नख भी गड़ जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, या चपटे पड़ जाते हैं। तो ये साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं शंकराचार्य जी। आकिरणे नकराज कांति, वो भी कैसे हैं? उद्यत सुधा वैभव ही आधौते, तो भगवान शिव तो फिर पैदल चलते हैं, नंगे पांव से चल रहे हो और सब पांव में धूल लगा हुआ हो, कीचड़ लगा हो, तो फिर वो नख के निकलने वाली जो कांति रोशनी छटा कहां से वो रोशनी करेगी भाई? बोले नहीं नहीं महाराज, भगवान शिव ऐसे प्रमादी नहीं है, वो आप बैठे राजमहल में मानस राज में रहें और पांव कीचड़ से भरा हुआ लेके जाएं, ऐसा नहीं है, अच्छी तरह धो के रखा है उन्होंने। किसे धोया है? उद्यत सुधा वैभव ही राधौते ही, पूर्व दिशा से उदित होते हुए चंद्रमा के वो चोमा अमृत से उन्होंने अपने चरण को धो रखा है। देख लो भगवान शिव के लिए क्या आश्चर्य की बात है भाई, है चंद्रमा रूपी सोम उस अमृत के अपने चरण प्रक्षालन करने में भगवान शिव को क्या समस्या है? हम लोगों को तो पानी भी नहीं मिलता है समय में, पानी कटौती पानी कटौती, आज पेपर में आ गया, हाँ अब फुल पानी आ रहा है, नहीं तो दो दिन से 50% पानी का कटौती था, तो क्या पांव धोएंगे, क्या नहाएंगे? कितनी जगह तो पानी नहीं मिलता पीने को, भगवान शिव को क्या कमी है अमृत से अपने चरण धो में, तो हर्जा क्या है? भया दस्याद अग्निस्तपति, भया स्तपति सूर्य, भयात इंद्रश्च वायुश्च मर्त्योधावति पंचमा। चंद्रमा तो उसी परमात्मा के इशारे से काम कर रही है, तो उनके लिए चरण प्रक्षालन करने के लिए अमृत देने में हम चंद्रमा को क्या आपत्ति है भाई? और चंद्रमा की जो श्वेत है धवली पना स्वच्छ, उससे धोने के बाद फिर चंद्रमा की रोशनी में भगवान शिव के सफेद नख, उभरे हुए नख, फिर उसकी रोशनी देखो क्या सुंदर। मान लो कि भगवान शिव का चरण तुम्हारे हृदय में आ जाए तो तुम्हारे लिए तो 12 महीना दिवाली हो जाए भाई। क्या सुंदर छटा है उसमें। आकिरणे नकराज कांति विभवे ही उद्यत सुधा वैभवेर आधौते पिच पद्मराग ललिते हंस ब्रज हीराश्रिते। और साथ ही भगवान शिव के चरण रूपी सौधांतर में यानी राजमहल में उन्हीं की नख की रोशनी तो है ही है, और साथ में क्या है, पद्मराग ललिते और चरण कमल की जो पद्म है राग, और पद्मराग मणि का भी नाम है, पुखराज बोलते हो ना, पुखराज रत्न है ना, मोती आदि है, रूबी पुखराज बर्मा में खूब बोलता है, रूबी और पुखराज, लाल पत्थर और हरा पत्थर, तो नीलम पद्मराग ललित है उससे युक्त है, एक एक उस घर के एक एक स्थान में अनेक रत्नों से जुड़ा हुआ है। हम सब ब्रज ही आश्रित ही, और वहां जो सरोवर है, क्योंकि भगवान शिव का चरण पद्म है, चरण कमल, तो कमल वहीं होगा जहां जल होगी, तो बढ़िया सरोवर भी वहीं पर है, पानी की कोई कमी नहीं है भैया। और उस सरोवर में हम सब ब्रज ही आश्रिति, अनेक हंस आदि पक्षी वहां विचरण करती है। कहते हैं कैलाश मानसरोवर में राजहंस रहता है, मानसरोवर में राजहंस रहता है। तो हमसे पूछा किसी ने, महाराज आपने राजहंस देखा? हमने कहा राजहंस था कि प्रजाहंस था ये तो हमको पता नहीं है, है? लेकिन इतने ठंडियों में भी उस सरोवर में पक्षी बहुत तैर रही थी, बहुत से पक्षियां तैर रही थी। अब दूर दूर, हम तो नजदीक तो आए नहीं वो, अब हम वहां तक जा भी नहीं सकते थे, बीच बीच में सरोवर में 80 किलोमीटर का परिघा है उस सरोवर का, इतने सबसे हाईएस्ट ऊंचाई में, पृथ्वी में ऊंचाई में इतना बड़ा सरोवर भूगोल में दूसरा नहीं, इतनी हाइट में मानसरोवर, और इतना स्वच्छ जल है, तो बीच बीच में पक्षियां तैर रही थी। अब वो राजहंस है कि प्रजाहंस है हमको पता नहीं, लेकिन थे जरूर। अमरनाथ में जाकर आपने कबूतर देखा कि नहीं? पूछते चुमन भाई के साथ गए थे, यानी चुमन भाई हम दोनों गए थे ना, सात आदमी थे हम लोग अमरनाथ, बहुत साल हो गए, कब गए थे भाई? नहीं नहीं आप थे नहीं साहब, अच्छा अच्छा हाँ आप नहीं थे, हाँ डॉक्टर अतुल मजूमदार थे मेरे साथ, वो प्रतिमा बहन थी, हो प्रतिमा बहन थी, उनकी बहन कल्पना बहन थी, डॉक्टर मजूमदार थे, हम लोग 8-10 आदमी थे भाई, अमरनाथ की यात्रा, ये सब यात्राएं हैं। तो हमसे पूछते हैं कि अमरनाथ में कबूतर की जोड़ी देखा कि नहीं, बोले एक नहीं हजार थे जोड़ी वहां, तो बोले केवल दो कबूतर रहते, बोले रहते होंगे सत्ययुग में, कलयुग में तो कलयुग में तो हजार कबूतर पहुंच गए भाई, क्योंकि कलयुग में तो उत्पादन बहुत, जनसंख्या केवल मनुष्यों की थोड़ी बढ़ रही है, हंसों की भी तो बढ़ेगी, कबूतरों की भी तो बढ़ेगी ना भाई, हाँ। तो इसी तरह उस सरोवर में राजहंस, हम सब ब्रज हिराश्रित ही, और उस महल की विशेषता है भाई, जिस महल में तुम्हें रहने के लिए हम कह रहे हैं, नित्यम भक्ति बधु गणेश चरहसी स्वच्छा विहारम कुरु। अब ये पूरे साहित्य में पहुंच गए शंकराचार्य जी, तुमको राजमहल में राजा जैसे विलासता को चरम सीमा में पहुंचते हैं राजा लोग, राजमहल में भौतिक विलासता की चरम सीमा का उपभोग करते हैं, है ना, सुरा सुंदरी का उपयोग करते हैं, वही विलासता का चरम सीमा है। सामान्य इतिहास में तो राजा लोग, राज्य बिगड़ा है, राज्य प्रजा विप्लव हुआ है, किसके चलते राजा लोग भोग विलास में लगते हैं, तब जाकर राज्य अव्यवस्थित होता है। तुम उस राजमहल में रहना, नित्यम भक्ति वधु गणेश च, नित्य भगवान शिव के प्रति अनन्य भाव रूपी भक्ति रूपी वधुओं के साथ तुम रहसी स्वेच्छा विहारम करो, एकांत में उस भक्ति वधुओं के साथ आनंद का अनुभव करो, विहरण करो। भाई स्थित्वा मानस राजहंस गिरिजा नाथांग्रि सौधांतरे, गिरिजा गिरी मने पर्वत, उनकी पुत्री गिरिजा और उनके जो नाथ हैं स्वामी हैं उनके अंग्री माने चरण कमल रूपी सौधांतरे राजमहल में स्थित्वा रहकर हे मानस राजहंस स्वच्छा विहारम करो, बड़ा आनंद पूर्वक वहां तुम विचरण करो निवास करो। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि भगवान शिव के चरण के आश्रय में रहने वालों को संसार में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है, और इसीलिए परमहंस, यहां राजहंस की बात कर दिया है, तो परमहंस लोग भगवान शिव के चरण को छोड़कर अन्यत्र जाते ही नहीं है। नित्य निरंतर परमहंस सन्यासी, वो तो हंस पक्षी हैं और ये परमहंस सन्यासी है, इसलिए पक्षी जाते एक जगह कभी नहीं रहते हैं, इसलिए परमहंस सन्यासी एक जगह कभी नहीं रहते हैं, एक जगह नहीं रहते। अब पहले तारीख को पहुंच जाएगा, उड़कर कहां पहुंच जाएगा, कहां पहुंचेगा, तो काठमांडू पहुंचेगा पहले तारीख को सोमवार सुबह 9 बजे उड़ेगा और पक्षी काठमांडू पहुंच जाएगा। अब भरोसा नहीं है कि काठमांडू से फिर उड़कर कहां पहुंचेगा, तैयारी चल रही है यूएसए की, वहां भी उड़ सकता है, परमहंस है जो एक जगह बैठे है? एक जगह बैठे तो वो तो हंस भी नहीं है, पक्षी है, साधारण पक्षी है जो विचरण करता रहे। चरई व्यति चरई व्यति, इसीलिए सन्यासियों को संबोधन किया जाता है श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ये विशेषणों से संबोधन किया जाता है सन्यासियों को, ज्ञानियों को, विद्वान सन्यासियों के लिए श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य। घूमने में वो तो मास्टर ऑफ परिव्राजक, क्या बोलते हैं टूरिस्ट, परिव्राजकाचार्य घूमने में मास्टर, परिता ब्रजति गच्छति अटति इति परिव्राजक, घूमने वालों में वो आचार्य है, मुख्य हेड है परिव्राजकाचार्य। श्रोत्रिय, सारे उपनिषदों का जिन्होंने खूब अध्ययन श्रवण मनन किया हुआ है ऐसे श्रोत्रिय, और जिनकी जहां घूमे तो भी जहां भी जाएं तो भी जिनकी निष्ठा अद्वैत ब्रह्म के अलावा और जगह उनकी निष्ठा नहीं है, इसलिए ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसा विशेषण से संबोधन करते हैं। तो परमहंस, हंस और परमहंस चार प्रकार के सन्यासी हैं, हंस परमहंस बहुधक कुटीच कुटीच, सन्यास दीक्षा लेने के बाद कुटी बनाकर आश्रम बनाकर जो एक जगह रहते हैं वह कुटीच सन्यासी कहलाते हैं, और दूसरे कुटीच और बहुधक, बहुधा के सन्यासियों के विशेषण है, वो सन्यासी ऐसे होते हैं जहां खूब पानी पर्याप्त हो वहां रहते हैं, और हमसा जो वेदांत प्रचार प्रचार में घूमते रहते हैं, और परमहंसा तो वह कुछ भी परिग्रह नहीं करते, दिगंबर विरक्त होकर विचरण करते हैं, प्रारब्ध में जो मिल गया वो खा लिया। परमहंस विचरण करते, एक रात से ज्यादा कहीं भी नहीं ठहरते। ठहर गए तो फिर फंस गए, ठहर गए तो फंस गए। इसीलिए नित्य निरंतर वैराग्य का अभ्यास भी करते रहते हैं महात्मा लोग हो, तो वे परमहंस हंस ब्रजेराश्रित, उन महात्माओं ने नित्य निरंतर परमहंसों ने जिसका आश्रय ले रखा है, कभी छोड़ा नहीं है, वहीं आश्रित हैं। और यही कारण है कि वहां उनको सब योगक्षेम मिल जाता है, उन्हीं में आश्रित हैं। आकिरणे नखराजिकांत विभवेर रुद्यत सुदा वैभवेर आधोते पद्मराग गली ललिते हंस ब्रजैराश्रिते नित्यं भक्ति वधु गणेश चरसी। या भक्ति के साथ विचरण करो, रमण करो, मन को समझा रहे हैं, भक्ति के साथ रमण करो। या रमण करो का अर्थ विलास करो नहीं है, और विलास ही करोगे ये अर्थ करोगे तो भी ठीक है, क्योंकि यहां भक्ति शब्द का अर्थ शंकराचार्य जी ने स्वस्वरूपा अनुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, वह ब्रह्मचिंतन सतत ब्रह्म विद्या ही स्वरूप अनुसंधानात्मिका जो भक्ति है, जो ब्रह्म विद्या जिसको कहते हैं, हे मन उसी वृत्तियों के साथ तुम भ्रमण किया करो। मन में उसके अलावा कोई दूसरे वृत्ति का आलंबन आश्रय न हो, इसी को नित्यम भक्ति नित्यम आसुप्ते रामृते कालम नयत वेदांत चिंतया, श्रुति ने कहा है। तुम यदि अपना कल्याण चाहते हो तो जगो तब से लेकर जब तक निद्रा न लगे तब तक सतत वेदांत विचार ही करते रहना। मनाग भी अवसरम न दद्यात, थोड़ा भी अन्य विषयों के प्रवेश चिंतन का अवसर मन को देना ही नहीं। उसी को कहा नित्य भक्ति वधु गणेश च रहसी। रहसी का अर्थ होता है एकांते, रहसी है ना, एकांते सुगमस्यताम परतरे ब्रह्मात्मना स्थीयताम। शंकराचार्य जी उपदेश पंचक साधन पंचक में कहते हैं साधकों को, हे साधकों तुम समूह में प्रपंचों में रहोगे तो वृत्ति बिगड़ सकती है, इसीलिए एकांते सुखमास्यताम। और एकांत का अर्थ यहां वेदांती लोग करते हैं एक एव अंता इति एकांत, सबका अथा तो आदेश नेति नेति करते हुए अंत में एक ही अद्वितीय बचे, उसका नाम क्या है, एक एव अंता एकांत। जो दृश्य प्रपंच है अथा तो आदेश नेति 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 अतत व्यावृत्तियाम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि, अतत का सब व्यावृत्त करो हटाओ सब अतत, अतत माने तत्माने परमात्मा, अतत माने अनात्मा पदार्थ, उन सारे अततों का व्यावृत्त हटाओगे तो अंत में जो बचेगा वो एक ही बचेगा, तो अधिष्ठान सत्ता और प्रकाश एक ही होगी। सजातीय विजातीय सुगत भेदत्रय शून्य, जो एक अंत में बचेगा उसी को, इस प्रकार का जो चिंतन है इसी को एकांत कहते हैं। और अंत शब्द का अर्थ अंदर कहोगे तो अंदर एक है, इंद्रियां अनेक हैं, मन अंतकरण अनेक हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार चार अवयवों से बना हुआ अंतकरण है, पांच ज्ञान इंद्रिय पांच कर्म इंद्रियों से बना हुआ इंद्रियां समूह है, प्राणापान समान बयान उदान ये पांच प्रकार की प्राण वृत्तियां हैं, लेकिन अंदर सबसे अंदर एक ही मैं है। क्योंकि हम लोग व्यवहार में भी क्या करते हैं, किसी से पूछा जाए तुम्हारी इंद्रियां कितनी हैं, तो सत्संगी लोग जवाब देंगे कि हमारी दस इंद्रियां हैं, जो सत्संग नहीं है तो उनको तो पता ही नहीं है कि कितनी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को ही उनको पता नहीं कि कितनी इंद्रियां हैं, किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछ लो, तुम आज चले जाना घर में जो भोजन बनाने वाला महाराज है ना उससे पूछना, महाराज इंद्रियां कितनी है तुम्हारी, बोलो पूछ लेना। भोजन बनाने वाला जो महाराज होगा, महाराज तुम्हारी इंद्रियां कितनी है, वो क्या समझेगा है? वो क्या कहेगा? इंद्रियों का अर्थ पत्नी लगाएगा, योगी पत्नी है बोलेगा वो, इंद्रियों का अर्थ पत्नी कहेगा वो। अरे इंद्रियां पूछ रहे, पत्नी नहीं भाई है? तो इंद्रियां क्या है मैं नहीं जानता हूं, उसको पता ही नहीं। आपके घर में झाड़ू पोछा कर लगाने वाली बाई को पता है इंद्रियां कितनी है, है? पूछो हे भाई इकड़े आओ इकड़े हाँ पूछो फिर तुम्हारे इंद्रियां कितनी है, काई मनता काई मनता है? वो पूछेगी बेचारा क्या बोल रहे हो, हमको कुछ पता नहीं है। वो बिचारी को क्या पता है, तुम लोग इतने दिनों से वेदांत श्रवण करते हो तो तुम लोगों को अपनी इंद्रियां अभी तक कितनी है, कौन कौन सी हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है। हो जब पूछते हैं इंद्रियां कितनी है तो जवाब नहीं देते, ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी है नाम बोलो, नहीं बोल पाते हैं। अभ्यास नहीं करते, सुनते हैं अभ्यास नहीं करते हैं तो ज्ञान इंद्रियों का नाम नहीं बता पाते, कर्म इंद्रियों का नाम बताओ तो नाम नहीं बता पाते हैं। बोलो इंद्रियां दस हैं, प्राण कितनी है, पांच हैं मुख्य और पांच उपप्राण हैं, मुख्य और अमुख्य करके दस प्राण हैं। अंतकरण कितनी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार चार अंतकरण हैं। ले जी और तुम कितने हो है? इस शरीर में तुम कितने हो? कोई कहेगा मैं दो हूं तीन हूं चार हूं है? घर में तुम लोग चार हो सकते हो, परिवार में कुटुंब में अपनी संख्या तुम्हारी हो सकती है, लेकिन तुम इस शरीर के अंदर तुम कितने हो? एक हो। अंदर शरीर के अंदर एक होने के कारण यही तो एकांत है। बस अंदर वृत्ति को कर लो, बाहर जाने वाली वृत्ति को अंदर लाओ और अंदर उसी एक तत्व का चिंतन करो, उससे बढ़कर एकांत अब बंबई में कहां खोजने जाओगे भाई है? हमारे एक महात्मा थे, उनको याद आ गया, एक कथा करते करते दिमाग में पुराने संस्कार आ जाते हैं ना। तो पहले पावलुआ में मलबार हिल एंगन गार्डन के पास ब्रह्मलिंग स्वामी त्याग मूर्ति गणेशानंद जी का फ्लैट था पावलुआ बिल्डिंग में, है ना? और वहां संत लोग रहते थे, हम भी रहते थे, हम पांच साल तक वहां रहे। तो तीन कथाकार हमेशा वहां रहते थे और वहीं से तीन जगह कथा संचालन करनी पड़ती थी और उनके रहने और खाने की व्यवस्था वहां होती थी। तीन कथा महात्मा हमेशा रहते थे, स्पिरिचुअल सेंटर में वहीं से कथा करनी है, वहां इंद्र कुंज हैंगिंग गार्डन में था तो वहां वहीं नहीं ईश्वर भवन वहां गैरेज में कथा चलती थी, ईश्वर भवन के गैरेज में है तो वहां भी एक महात्मा कथा चाहिए। और ये पैडल रोड में पटेल सदन में कथा चलती थी, कन्हैयालाल पटेल का घर वहीं बेसमेंट हॉल था वहां कथा चलती थी। और डी रोड में वहीं से कथाकार जाना पड़ता था, तो महात्मा लोग इस तरह वहां रहते थे। तो हम बता रहे थे एक महात्मा थे, वो आए स्पिरिचुअल सेंटर में कथा करते थे, वहां से पैदल आते थे और ये बीच में गली है वहां से उतर के फिर स्पिरिचुअल सेंटर कथा करके घूमते समय में इधर से फिर जाके फिर ये बाबुलनाथ मंदिर के बगल के सीढ़ी से चढ़ाई करके जाते थे। एक दिन कुछ लड़के लड़कियां कुछ वहां सड़क के किनारे बैठे थे, महात्मा ने कुछ बोल दिया, क्या बोल दिया उनको बोलना नहीं चाहा था है? चुपचाप अपने रास्ता चलते क्यों बोलते हो, तो बोल दिया उन्होंने, कुछ बोल दिया होगा, लूट लिया उनको तो साहब, बेचारे घड़ी था वो लूट लिया, जो वहां दक्षिणा जो मिली थी वो लूट लिया है, दो चार थप्पड़ लगा दिया, पांच सात लड़के थे लड़कियां थी, लगा दिया थप्पड़ बेचारा हो गए। तो हमने कहा किधर से तुम आए, बोले हम चौपट पट्टी गए थे उधर के रास्ते विचार किया कि उधर जाकर आए, वो चौपट पट्टी गए थे, वो बोलते थे चौपाटी को चौपट पट्टी बोलते थे वो है? अरे इन चौपट पट्टियों में तुमको क्यों भटकना है, एकांति वृत्ति बाहर ले जाओगे तो सब चौपट पट्टी ही मिलेगा तुमको, एकांते सुखमास्यताम परतरे। तो यहां रहसी एकांते रहसी, एकांत में उस ब्रह्माकार वृत्ति के साथ तुम आराम से खूब रमण करो, अखंड ब्रह्माकार वृत्ति के साथ तुम खूब आनंद का अनुभव करो। नित्यं भक्ति वदो गणेश रहसि स्वेच्छा विहारं कुरु स्थित्वा मानसराज हंस गिरिजा नाथांग्रि सौधांतरे। अब दूसरे रूप से साहित्य में खूब गए शंकराचार्य जी, संबोध्यान बसंत संगिनी हृदा रामे अघनिर अघजीर्ण छदा स्रस्ता भक्तिलता छटा विलसिता पुण्य प्रवाल श्रिता दीप्यन्ते गुणकोरका जप बच पुष्पाणि सद्वासना ज्ञानानंद सुदा मरंद लहरी संबित फलाभ्युन्नति। शंकराचार्य जी एक ऐसा बगीचे का वर्णन कर रहे हैं, ऐसा बगीचा है संबुद्ध्यान नित्य निरंतर हे चित्त भगवान शंभु का भी ध्यान में लगे रहो। संबुद्ध्यान संबुद्ध्यान एव वसंत संबुद्ध्यान वसंत लो जी, भगवान शिव का नित्य निरंतर जो ध्यान है वही बसंत ऋतु है। छह ऋतुओं में से सर्वश्रेष्ठ उत्तम आनंददायी ऋतु बसंत ऋतु है। साहित्यकारों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है बसंत ऋतु, आनंददायी है बसंत ऋतु। जीवन में बसंत ऋतु से बढ़कर और कोई ऋतु नहीं है, संबुद्ध्यान ही बसंत ऋतु है। संबुद्ध्यान वसंत और बसंत संगिनी हृदारामे हृदय आराम हृदाराम तस्मिन हृदारामे, हृदय रूपी एक बहुत सुंदर बगीचा है। ये हृदय को बगीचा बता रहे हैं शंकराचार्य, एक बहुत बढ़िया जंगल बगीचा। हृदारामे माने जंगल बगीचा बाग। बसंत संगिनी बसंत के साथ रहने वाली शिशिर ऋतु, क्योंकि शिशिर के बाद बसंत आता है, शिशिर के बाद बसंत ऋतु आता है। शिशिर ऋतु का काम क्या है? जीर्णच्छदा स्रस्ता, बगीचे के पेड़ों में जो जीर्ण पत्ते हैं उनको गिराकर पेड़ से अलग कर देना शिशिर ऋतु का काम है। पत्ते पीले पत्ते हो चुके हैं ना, उनको गिराना और पेड़ से अलग कर देना, यह शिशिर ऋतु का काम है। तो बसंत संगिनी क्योंकि उसके साथ शिशिर के बाद बसंत, शिशिर आते ही बसंत आता है, इसलिए बसंत का संगिनी है वो, साथ में आने वाली ऋतु है। उसने क्या किया? उसे हृदय रूपी जो जंगल में माने बगीचे में अघ रूपी जो जीर्ण पात हैं, अघ माने पाप, अनेक जन्मों से संचित हुए हुए संचित है, अनेक जन्मों से संचित हुए हुए उन पापों को शिशिर ऋतु ने क्या किया? जीर्ण बनाकर उस बगीचे के पेड़ों से अलग कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उन जीर्ण पत्तों को अलग किए बिना नवीन पत्ते आएंगे नहीं, उस वृक्ष की फिर पुनर्शोभा नहीं बढ़ेगा। तब क्या किया, तो बसंत ऋतु तुरंत आकर भक्ति लता छटा, भगवान शिव की जो भक्ति रूपी लता है उसने क्या किया, बसंत ऋतु आते ही भक्ति रूपी लता को एकदम बढ़ा दिया। और विलसिता पुण्य प्रवाल आश्रिता, और अगर रूपी पात को नष्ट कर दिया तब फिर नए पात आना चाहिए कि नहीं, तो भक्ति रूपी नए पत्ते प्रवाला चंदाम से ये सपर्णानी है ना, गीता के 15वें अध्याय में ऊर्धमूल मदसा का अश्वत्थम प्रावुरभ्यम चंदांसी यस्य पर्णानि स्तंभेद सवेदवित अधश्च ऊर्धम प्रस्तृता तस्य साका गुण प्रवाला विषय गुण प्रवृद्ध विषय प्रवाला। प्रवाल माने नए नए पत्ते। संसार का आकर्षण क्या है कि नए नए विषय जीव के सामने आ जाना, यही संसार वृक्ष का आकर्षण है। जैसे शरद ऋतु के बाद बसंत ऋतु आता है, बसंत ऋतु आते ही उन पेड़ों में नए नए पल्लव आदि आ जाते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, तो पक्षियों को आकर्षित करते हैं। इसी तरह संसार वृक्ष में नए नए जो विषय आते हैं सामने जीवात्मा के सामने, तो जीव रूपी पक्षी को आकर्षित करते हैं। वहां विषय रूपी प्रवाल जीव रूपी पक्षी को आकर्षण करते हैं, तो यहां अगर जीर्ण छदा होकर जो नए नए भक्ति रूपी लता है उन पेड़ों में एक एक लताएं हरे हरे लताएं जब उसमें चढ़ती है तो जंगल पूरा हरा पड़ा हो जाता है। और विलसिता पुण्य प्रवाला पेड़ों में पुण्य रूपी पत्ते आ गए। इसी प्रकार के हमारे भक्ति जीवन में भगवान के चरण में जो हृदय आराम में रहने वाले हैं उनके जीवन में जो पुण्य की विकास पुण्य का विकास है वही पुण्य प्रवाल है। श्रिता विकसिता श्रिता विकसिता दीप्यन्ते कुणकोरका दीप्यन्ते गुण कोरक गुण रूपी सद्गुण रूपी कोरक जीवन के सद्गुण के वह दीप्यमान हो रहे हैं। जप वच नित्य निरंतर भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करना, ये जप ही उस बगीचे का पुष्प है। पुष्प नित्य निरंतर जप वच फूल भी, क्योंकि बगीचा हो और उसमें फूल न हो तो बगीचे का क्या शोभा। बगीचा हो खाली पेड़े पेड़ हो लताएं न हो तो बगीचे का कोई शोभा नहीं। बगीचा हो सारे पत्ते झड़ गए हो नए पत्ते ना आया हो वो उस जंगल का उस बगीचे का क्या शोभा है। और पुराने पत्ते न झड़े और नए पत्ते आना संभव नहीं, इसीलिए जीर्णच्छदान स्रस्ता संबोध्यान बसंत संगिनी भगवान शिव के ध्यान रूपी बसंत के द्वारा जीर्णच्छदा स्रस्ता नए पत्ते गिर जाने के बाद और अन्य पुराने पत्ते गिर जाने के बाद नए नए पत्ते उसमें आ गए हैं। अब भक्ति की लताएं विकसित हो रही हैं और पुण्य प्रवाला नए नए चमकदार कलियां, क्योंकि नए पत्ते आने से पहले वह कलियां कली होती है, छोटे छोटे कली कली के फिर विकसित होकर नए पत्ते होते हैं, फिर वही साल भर के बाद जीर्ण होकर गिर जाते हैं। दीप्यन्ते गुणकोरका जपवच जप एव पुष्प जप बच जोर जोर से वाणी से बैखरी वाणी से पंचाक्षरी का उच्चारण रूपी जो वच जप है, या फिर पश्यंती मध्यमा रूपी वाणी से पंचाक्षर का जप, वही पुष्प है। बैखरी रूपी वाणी भी पुष्प है। एक जगह शंकराचार्य जी ने लिखा है, पुष्पाणि संतु मम इंद्रियाणि। हे शिवा, ये मेरे जितने भी इंद्रियां हैं ये आपके लिए पुष्प होवे, बस यही आपके पूजा में पुष्प का काम करेंगे भाई। यही पुष्प है, मैं यही इंद्रिय रूपी पुष्प आपको चढ़ा देता हूं। मन अक्षता, मन ही अक्षता है, मैं उस अक्षता को चढ़ाता हूं। देख लो, इंद्रियां पुष्प हैं, मैं उस पुष्प को पुष्पों को चढ़ाता हूं, और मन अक्षता है, मैं उसको चढ़ाता हूं। ये भावनात्मक पूजा है, इस तरह साधना करते साधक। दीप्यन्ते गुणकोरका जप बच पुष्पाणि, और उन पुष्पों में क्या है, बोले सदवासना जीवन में। इन साधनाओं के द्वारा जीवन जब इन साधना में लगता है तो सदवासना सद्गुणों का सुवास फैलने लगता है। सदैव वासना, सद्वासना, शुभ वासना, अशुभ वासना तो उसके जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकते। हाँ, दुर्गंधी तो उस पुष्प में है ही नहीं। शंभू जो भगवान शिव के पंचाक्षर रूपी जप रूपी पुष्प में दुर्गुण तो है ही नहीं। जप में दोष कहां से हो सकता, बोला परमात्मा के पवित्र मंत्रों के जप में दोष कहां से हो सकता होगा। फिर भी दोष देखने वाले उसमें भी दोष देखते हैं। महात्मा एक दृष्टांत सुनाते हैं ना, ये कोई व्यक्ति था, संसार के दुखों से दुखित हुआ हुआ व्यक्ति, पीड़ित था, दुखी था, दरिद्र था। तो एक बार एक महात्मा के पास गए। महात्मा से उसने अपनी बात कही कि महाराज मैं बड़ा दुखी हूं। महात्मा ने कहा, किस बात के दुखी है भाई? यही है कि ढंग का घर नहीं है, अपने कोई दुकानदारी नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, वैभव नहीं है, इसी से मैं दुखी हूं। महात्मा ने कहा कि जो है उसी में संतोष करो बेटा। कपिल भगवान ने माता देवहूति को जीवन का मुख्य रहस्य बताते हुए जीवन में अवश्य करणीय तीन बात को बताया। भागवत का प्रसंग है। सबसे पहले तो हे मां, दैवात लब्धेन संतोष, प्रारब्ध से तुम्हें जो प्रारब्ध प्राप्त हुआ है उसी में संतोष करोगे तो तुम सुखी होगे। प्रारब्ध से जो प्राप्त हुआ उसमें यदि संतोष नहीं किया तो संतोष यानी सुखी होने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। महर्षि पतंजलि ने भी इस बात को समर्थन किया है, संतोषात अनुत्तम सुखलाभ, पतंजलि सूत्र का सूत्र है ये। जीवन में तुमने संतोष प्राप्त कर ली तो सब कुछ प्राप्त कर ली है, क्योंकि संतोष के द्वारा जो सुख की प्राप्ति होती है जीवात्मा को वो अनुत्तम है, उसकी संसार में किसी विषय के साथ तुलना कर ही नहीं सकते हो। इसलिए लोक भाषा में भी कहा जाता है, संतोषी सदा सुखी, असंतोषी सदा दुखी। असंतोषी को सुखी करने का संसारियों के पास कोई उपाय नहीं, संतोषी को दुखी करने का संसारियों के पास कोई उपाय नहीं है। जो संतोषी है उसको दुखी करने का क्या उपाय हो सकता है? उपाय ही नहीं है। वो तो ये कह देगा मेरा भाग्य प्रारब्ध है, प्रारब्ध से ज्यादा मिलता नहीं, समय से पहले नहीं मिलेगा, प्रारब्ध से ज्यादा नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं? जो चीज मिलना है वो समय में मिलेगा, समय से पहले भी नहीं मिलेगा, समय बीत जाने के बाद भी नहीं मिलेगा, इसलिए समय का महत्व है। इसी प्रकार के जिसको जो कुछ भी मिलता है प्रारब्ध से कम भी नहीं मिलेगा, प्रारब्ध से ज्यादा भी नहीं मिलेगा, जितना प्रारब्ध है उतना ही मिलेगा, जैसा प्रारब्ध है वैसा ही मिलेगा, प्रारब्ध से अन्यथा हो ही नहीं सकता है। तो संतोष, महात्मा ने समझाया उसको, संतोष कर लो भैया। बोले नहीं महाराज, आप कृपा करो, कोई उपाय बताओ। तो बेचारा महात्मा ने कहा कि जाओ बेटा, ये भगवान शिव का तारक मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र। हाँ, तो ये मंत्र का सतत जप किया करो, खूब जप करो, और इस मंत्र का जप करो, शिव कृपा होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जप करो, शांति भी मिलेगी, समृद्धि भी मिलेगी, सब मिल जाएगा। अब वो तो महात्मा से मंत्र लेके आ गया, ओम नमः शिवाय मंत्र लेके आ गया, आसन लगा के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा, आसन लगाया, बैठ गया, बस रीढ़ की हड्डी सीधी की। हाँ, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम सम, हाँ, दृष्टि को नासिका के आगे लगाया और बस ओ जोर जोर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जप पुष्पा है, बाघ पुष्पा, तो श्रद्धांजलि में बाघ पुष्पांजलि कहते हैं कि नहीं, वाणी को ही पुष्प, मेरा ये बाघ पुष्पांजलि समर्पण करता हूं। तो खूब जप कर रहा था, अब उधर उसकी पत्नी जो थी उसको सहन नहीं हो रहा था, पत्नी कुछ मेरे जैसे ही रही होगी कोई, उसने कहा कि काम करना छोड़ दिया और यही ओम नमः शिवाय, दिन भर यही ओम नमः शिवाय, सुबह से लेकर दिन भर। अरे दिन भर कुछ जाता, मजदूरी करता, 100-150 रुपया कुछ मिलता, आटा दाल की व्यवस्था होती, ये ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके क्या मिलने वाला है तेरे को। अरे चुपचाप बैठ, महात्मा ने कहा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो चुपचाप बैठ। बेचारा सुबह उठे ओम नमः शिवाय करे, अब उस पत्नी को तो सारा घर का काम करना पड़े। कहते हैं कि उसके घर में एक भैंस था, भैंस थी, बढ़िया दूध देती थी। अब उस दूध तो तब देगी ना जब ना उसको दाना पानी घास खिलाओगे, वो तो ओम नमः शिवाय करने लग गया। अब वो सारा काम उसी की पत्नी में आ गया तो और भी ज्यादा चिढ़ गई वो, क्या मुसीबत है भाई। तो कुछ महीने भर के बाद वो भैंस बिचारी मर गई। तो उसकी पत्नी ने कहा देखो मैंने कहा था ना, ये कहां से ये खटपटे महात्माओं के पीछे पड़ गए और क्या क्या तंत्र मंत्र लेके आते हो, ये करते हो। बिचारी अच्छी खासी दूध दे रही थी भैंस, वो भी ये नमः शिवाय करते करते वो भी मर गई। अब पता नहीं फिर क्या होने वाला है, और जाओ इस मंत्र वापस करके आओ, यही मंत्र जपने से सब अनिष्ट हुआ। बूढ़े बाबा का फोन फिर बजेगा, तीन बार बज चुका है बूढ़े बाबा का फोन, मैं देख रहा हूं। हाँ, ये देख लो फिर बजा। हाँ, हाँ, या तो स्विच ऑफ करो या फिर बाहर चले जाओ। तो पत्नी ने डांटा उसको, जाओ मंत्र वापस करके आओ, फिर न जाने क्या होने वाला है। बेचारा वो सोचने लगा तो ठीक ही कह रही है, हो सकता है, क्योंकि अच्छे खासी दूध दे रही थी, भैंस मर गई, चल भाई जाता हूं महात्मा को मंत्र वापस कर देता हूं। महात्मा के पास चले गए, बोले क्या हुआ बेटा। महाराज आपने जो मंत्र दिया था वो वापस कर लो भाई। बोले क्या हुआ, ये तो अमंगल हो गया, अशुभ हो गया। बोले क्या, भैंस अच्छी खासी थी वो मर गई। किसने कहा मंत्र जपने से भैंस मर गई, मेरी पत्नी कहती है, और इसीलिए उसने कहा कि मंत्र वापस करके आओ, तो मैं वापस करने आया हूं, मंत्र वापस ले लो महाराज। महात्मा ने कहा कि देख बेटा, मंत्र जपने से भैंस मरी है, अब मंत्र तू वापस करेगा तो तेरी पत्नी मरेगी। समझे, अब ये मंत्र वापस करेगा, मैं वापस तो ले लूंगा, लेकिन मंत्र वापस लेते ही तेरी पत्नी मरेगी। तू पत्नी से पूछ के आ जा कि मंत्र वापस करो कि नहीं, महात्मा ने ऐसा कहा है, पूछ के आ जा। ठीक कह रहे महाराज, मैं पूछ के आता हूं। मैंने उसके पूछे बिना तो करना ठीक वापस नहीं है ना, वापस करना ठीक नहीं है ना। मैं होता तो कर लो चाल जल्दी से, कह देता हूं, लेकिन मेरी पत्नी नहीं है तो क्या करूं है। महात्मा बेचारा हुआ भक्त फिर आ गया पत्नी के पास, मंत्र वापस किया, महात्मा ने मंत्र वापस किया। बोले महात्मा तो मंत्र वापस लेने को तैयार है, फिर वापस किया कि नहीं। बोले एक समस्या हो गई है। क्या हो गया? महात्मा ने कहा मंत्र जपने से भैंस मरी है, मंत्र वापस करेगा तो तेरी पत्नी मरेगी, और पूछ के आ कहा है कि मैं तुमसे पूछने के लिए आया हूं मंत्र वापस करूं कि नहीं। बोले ऐसा है तो फिर वापस मत करो है? फिर तो वापस नहीं करो है? तो वापस फिर गया महात्मा के पास। महाराज वो मना कर रही है वापस करने से। बोले वो यदि वापस करने मना कर रही है तो फिर तू भी मरेगा, फिर क्या करूं महाराज? बोले फिर पूछ के आ, वो भी जपेगी तो फिर तू भी बचेगा, वो भी बचेगी, वापस करेगा वो मरेगी है, और जपेगा तो तू मरेगा, क्योंकि भैंस मर गई अब तेरे तेरा नंबर है। तो दोनों जपोगे तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। अब पूछ के आ पत्नी से। फिर गया पत्नी के पास कि महात्मा ने ऐसा कहा महाराज। बोले ठीक है, अब तुम भी जपो मैं भी जपती हूं, क्योंकि न जपे तो फिर अनर्थ होगा। तो पत्नी भी फिर मंत्र जपने लग गई, तो दोनों ही घर में जपने लग गए, तो फिर कोई झगड़ा होने के सवाल है? पति जपे पत्नी न जपे तो झगड़ा, पत्नी जपे पति न जपे तो झगड़ा, पति भक्ति करे पत्नी भक्ति न करे तो झगड़ा, पत्नी भक्ति करे पति भक्ति न करे तो झगड़ा, दोनों भक्ति कर रहे तो अब क्या झगड़ा? सब ठीक ठाक हो गया कि नहीं? तो दोनों खूब निष्ठा से भगवान शिव की जप करने लग गए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। मंत्र में अमंगल तो हो ही नहीं सकता है भैया, वही तो कह रहे हैं। दीप्यन्ते गुण को रखा जप बच पुष्पाणि सद्वासना असद्वासना अशुभ, तो मंत्र जप में हो ही नहीं सकता है, सब शुभ वासना माने शुभ ही शुभ, कल्याण ही कल्याण विद्यमान रहता है। ज्ञानानंद सुधा मरंदलरी, ज्ञान ही भगवान शिव के चरण की भक्ति करोगे तो वहां ज्ञानानंद सुधा अमृत, मरंदलहरी तरंग है। संबित फलाभ्युन्नति ही, संबित माने ज्ञान, यहां ज्ञान और संबित में प्रायवाची शब्द है, यूं तो वेदांत में संबित का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान, और ज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र साधन होने के कारण संबित को फल कहा। उस बगीचे में हृदय रूपी आराम में बगीचे में हाँ, बसंत ऋतु के संबोध्यान रूपी बसंत से सारे पत्ते नए नए पत्ते आ गए हैं, और बसंत सखी शरद के द्वारा शिशिर के द्वारा पुराने पाप यानी पत्ते सब नष्ट हो गए हैं, और भक्ति रूपी लताएं जंगल को हरा भरा कर रही है, और पुण्य प्रवाल नए नए कोपिल आ रहे हैं उसमें, और दीप्यन्ते गुण को रखा जप बचा, और चारों तरफ से भक्ति का भाव दीप्यमान हो रहा है। पुष्पाणि सद्वासना, क्योंकि जप बचा भगवान शिव के मंत्र का नित्य जप यही पुष्पाणी है, उसके होते हुए सद्वासना फूल में जो सुवासना है, इसी तरह भगवान की भक्ति में शुभ वासना ही विकसित होती है, अशुभ वासना नहीं। और ज्ञानामृत वहां ज्ञान का सरोवर है जल का, और मकरंद लहरी बड़ा तरंग है उसमें निकलती हैं, और संबित फल वो जंगल में वृक्षों में आत्मज्ञान रूपी फल लगे हुए हैं और उस फल का आनंद तुम फल का भोग करके तुम आनंद का अनुभव कर सकते हो। इसलिए हे मन तुम इतस्तत मा गच्छ, तुम और साधारण जंगलों में मत भटको, मन रूपी हृदय जंगल को छोड़कर तुम इधर उधर मत भटको, वहीं सर्व सुख उपलब्धि है। ये 47वें श्लोक तक की व्याख्या इस साल पूरी हो गई है और बाकी व्याख्या तो अगले साल है। तो आज से हम पूर्णाहुति का हैट्रिक कर रहे हैं। आज ये शिवानंद लहरी का ये 13 दिवसीय संत व्याख्या प्रवचन माला का ये श्रृंखला आज पूरा कर रहे हैं, प्रेमपुरी आश्रम आयोजित। और इस श्रृंखला को निरंतर शिवानंद लहरी की श्रृंखला को अगले साल, ठीक हमारे चिमन भाई जी ने कहा, चिट्ठी बनाकर दे दिया है कि अगले साल 16 जून से 28 जून तक। तो ये समझ गए सो आपका, नहीं समझे सो हमारा। तो ये हम हमेशा कहा करते हैं। तो प्रेमप्रिय आश्रम को हार्दिक धन्यवाद कि ऐसे शुभ कर्म, नए नए प्रवृत्ति भक्तजनों के सामने, जिज्ञासुओं के सामने ये लाते रहते हैं और यही प्रेमपुरी आश्रम का लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य निरंतर चलता रहे, इसी से भक्तों का, साधकों का उद्धार होगा, प्रेमपुरी आश्रम का गौरव बना रहेगा। अस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
नारायण 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 नारायण। आइए हम सब हृदय की संपूर्ण गहराई से, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। आज इस स्तोत्र का जो हम श्रवण कर रहे थे, आज विश्राम है। जैसा कि स्वामी जी ने बताया, अगले वर्ष 2014 में 13 जून से 28 जून तक फिर हमें इसी स्तोत्र का लाभ प्राप्त होगा। स्वामी जी ने अपनी वाणी के द्वारा हमें भगवान शिव के चरणों में पहुंचा दिया। भगवान शिव की जो अनंत महिमा है, जो उनके विशिष्ट गुण हैं, जो उनकी करुणा है, जो उनका स्वभाव है, स्वामी जी ने अपनी अमृतमयी वाणी से हमें शिवजी का साक्षात्कार करवा दिया। ऐसा अनुभव होता है कि जैसे शिवजी का वरदहस्त हमारे सिर पर हो। समुद्र मंथन जब हुआ था, जब हलाहल जहर निकला था और उस जहर के अग्नि से सारा वातावरण दूषित हो रहा था, सब लोग घबरा रहे थे। उस समय सब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उन्होंने उस अलाहल जहर का पान किया। तभी से, और तो देवता हैं लेकिन देवाधिदेव शिव महादेव कहलाए, तभी से हमारे भी अंतःकरण में यदि हम मंथन करें तो हमारे अंतःकरण में भी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष दंभ सब तरह के अवगुण हमारे हृदय में भरे पड़े हैं। आवश्यकता है हृदय का मंथन करने की। जैसे समुद्र का मंथन हुआ, वैसे ही हम अपने हृदय का मंथन करें तो वे सारे अवगुण बाहर आएंगे। तो हमें भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि जैसे आपने उस जहर का पान किया, वैसे ही हमारे अंतःकरण में जो ये विष है कामनाओं का, विषयों का, कृपा करके उस विष का भी पान कर लें ताकि हमारा कल्याण हो। हम भगवान शिव से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे आपके चरणों में हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास उत्तरोत्तर बढ़े और आपकी कृपा से प्राणी मात्र का कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी के श्री चरणों में बार बार वंदना करता हूं। जय श्री कृष्ण।